ये लोग कैसे हैं? ये लोग मध्यम भागवत। उत्तम भागवत कौन है? ब्रजवासी। इसमें रूप सनातन इत्यादि जो हैं, ये सब ब्रजवासी और उनके अनुदान वो सुरगण ब्राह्मणों का प्रति भी आदर हो। दैव वर्णाश्रम में निष्ठा संपन्न वैष्णव धर्म के शिक्षक ब्राह्मणगण दैव वर्णाश्रम में, उनमें थोड़ा सा हो सकता है कि नारायण की उपासना करें, कुछ फलभोग की लालसा भी उनमें रहे। दैव वर्णाश्रम से हैं, गृहस्थ वैष्णव लोग हैं ब्राह्मण, किंतु एकांतिक कभी निष्ठा नहीं है भगवत भक्ति में। कुछ अभी है दैव वर्णाश्रम। वर्णाश्रम माने क्या? भोग और मोक्ष के लिए भी ठाकुर जी का अर्चन पूजन करते हैं, किंतु उसमें लगाया वैष्णव धर्म के शिक्षक, इसलिए ये भी नहीं वैष्णव धर्म उनमें है, उनको भूषण का ये कनिष्ठ वैष्णव कहलाते हैं। ये कनिष्ठ भागवत, कनिष्ठ भागवत कहा, वैष्णव नहीं कह रहे। कनिष्ठ वैष्णव और भागवत में कोई अंतर होगा कि नहीं? अंतर है ना, कनिष्ठ वैष्णव मत समझ लो।
कनिष्ठ भागवत उत्तम में
ये सब में
कोई मूर्छित कसाय निर्जित कसाय
वो सब में आए,
उत्तम अधिकारी के लक्षण में
ये भी भागवत हो सकते हैं जिनको कहा। ये ब्राह्मण भी हो सकता है, दूसरे संप्रदाय के भी महाभागवत हो सकते हैं, किंतु महाभागवत हम जिसको चाहते हैं रूप सनातन की धारा में, वो हमारे एकांत हृदय के उपास्य। किंतु इनके प्रति भी हमको कोई अवज्ञा अथवा अशिष्टता नहीं करनी चाहिए, इनके प्रति भी प्रीति रखनी चाहिए। ये कनिष्ठ भागवत है, इसलिए भागवत कहाँ ही है? स्वयं भगवान कृष्ण सम्राट निक महाराज के प्रसंग में द्वारका व्यासियों को समझाया है क्या? विप्रम कृतागसम अपि नैव द्रुह्यत मामका। हे मामका, वो हमारे अपने हैं कौन?
ब्राह्मण।
ये अपराध करने पर भी कृतागसम अपि नैव द्रुह्यत, इनसे द्रोह नहीं करना चाहिए क्योंकि वो हमारे हैं। मैं कौन हूँ? नमो ब्रह्मण्य देवाय, मैं ब्रह्मण्य देव, इसलिए रो मत करो। घनंतम बहु, मारने पर भी सपंतम
अभिशाप दे,
अभिशाप दे रहे हैं तो भी नित्यशब नमस्कुरु, मेरे प्रिय जनों अपराधी ब्राह्मण से भी द्वेष मत करो। अश्वत्थामा जैसे लोगों को भी अर्जुन को मार नहीं, द्रौपदी ने मारने से रोका, आपताई था, ब्राह्मण का काम नहीं किया, ब्राह्मण अधम का काम
आता था, ये बधी ना दोष
दोष नहीं था। कभी द्रौपदी ने क्या कहा? मत मारो, और भीम इत्यादि करेंगे मारो। युधिष्ठिर कुछ नहीं समझिए क्या करना चाहिए, कृष्ण यही बतला तो यहीं पर अपने प्रियजनों को बता रहे हैं। जो ब्राह्मण हो उस देश देश मत करो, चाहे वो मारता रहे साथ देता रहे तो भी नित्य उसको पढ़ा, क्योंकि कुछ भक्ति का लेश उसमें है। इस ये अश्वत्थामा उसमें भक्ति थी कि नहीं? सुनता है कि वो अगले
इंद्र होंगे द्वापर में,
द्वापर में बनेंगे। अच्छा, इंद्र का मेरे कुछ भक्ति का भाव नहीं है तो इंद्र तो पाएगा, व्यास बनेगा शायद, तो बताओ तो व्यास उसको व्यास का स्थान मिलेगा तो वो कैसा करती है? वो जो कुछ किया शंकर जी ने कराया, वो ध्वंस कराना था, कृष्ण की भी भूभार हरण करने की इच्छा थी, इसलिए द्रौपदी के पुत्र कौन धृष्टद्युम्न बिना किसी अपराध के उनका वध किया। द्रोणाचार्य किसी ने कुछ किया, उनको भी तब कुछ फल मिलना है, इस रूप में शंकर जी ने उनको फल देने के लिए अपनी सारी शक्ति उनमें दे दिया। तो ये द्रोह अश्वत्थामा का नहीं है बल्कि शिव का दोष है,
संहार का
समझ रहा है ना, शिव जी का, शिव जी ने कराया। और शिव जी ने कैसे कराया, कृष्ण की इच्छा से खेत को काट लिया, बीज ठीक रहा, बीज को साफ सुथरा करके काम लगा।
क्षत्रियों में दोष नहीं होता है विनाश के
होता है, कर्ण दुर्योधन तो क्षत्रिय थे किंतु ये असुर थे, इसलिए वो साप भी देता रहा है। ब्राह्मण जिसमें कुछ थोड़ी सी भक्ति है सलो, और जो हरिनाम करता है, जो दिन रात शिक्षा देता है, पालन पोषण करता है, वो यदि डांट भी दिया, यदि शासन किया, एक थप्पड़ लगा भी दिया, तो उसके विरुद्ध क्या करना चाहिए, झगड़ा विवाद इत्यादि खड़ा कर देना चाहिए? तो नहीं भाई, ऐसा मत करो, तो भी उसको नित्य नमस्कार करते। अतः इनके प्रति द्वेष या अवज्ञा का भाव, इसलिए बार बार कह रहे हैं कि हम लोग इसे सावधान रह करके भक्ति में प्रवेश करते हैं। घंटा हो गया, शिवानंद को लात मारा,
बेटा मर जाए,
और कहा कि तुम्हारा बेटा मर जाए, और वो हंसने रहे, हंसने लगे, और उनकी पत्नी रोते रहते महाप्रभु से नाविश की,
अपने पति को कहा,
अपने पति को कहा, जो ऐसे उन्होंने कहा मारा भी शायद लात से या क्या,
जब आए
लात मारा, किंतु
भूख लगा है, देर हो गया,
भूखो लगी हमको, तुमने खिलाने एक लात नित्यानंद जी ने मारा, और कहा इसके दो पुत्र बच गए,
सब पुत्र मर गए,
और वो हंस रहे हैं, जानते कि नित्यानंद प्रभु कौन है बलदेव, ये ऐसा नहीं कर सकते, उनके पुत्र मरे, पुत्र मरेंगे, और उनको मरा तो क्या हुआ, महाप्रभु के परिकर हो गए शिवानंद से। इसलिए ये सब का विचार करना चाहिए, कोई शासन करते हैं उसको समझने की चेष्टा करनी चाहिए। स्वमंत्र, अपने मंत्र में खूब रुचि रखो, आज कर लेंगे कल कर लेंगे, कोई जल्दी का काम है ये संसार का, किस कोई आ गया उसे बातचीत करने लगे, समय नहीं रहा, दीक्षा का मंत्र जो गुरु जी ने दिया था, अच्छा आज तो हो नहीं सका, अच्छा कल, कल नहीं हुआ तो अच्छा पीछे, यदि हुआ तो जल्दी से बटोर लिया, एक एक बार कर लिया, नहीं किया तो उपेक्षा कर, कभी भी कुछ नहीं होगा, नियमित रूप में श्रद्धा के साथ में करो, विशेष प्रति पूर्वक गुरुदेव के द्वारा बतलाई विधि के अनुसार में प्रतिदिन नियमित रूप से अपने मंत्र का मन लगा करके कॉन्सेंट्रेट करके मन को और जब करना चाहिए। हरिना हरि कृष्ण गोविंद गोपीनाथ राधा का मुख्य नाम, पति पावन परमात्मा परम इत्यादि करुण नाम, मुख्य नाम ही ग्रहणीय है, विशेष करके हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम, इस 16 नामात्मक परम रसमय इस नाम ब्रह्म को कलयुग का महामंत्र कहा गया है, और तब प्रतिपूर्वक इसका जप और कीर्तन करें प्रतिदिन, और सब काम करते जाओ, और सब काम को छोड़ते जाओ, क्रमशः इसमें आए, हम 10 जन्म में जो नहीं कर सकते एक मंत्र के प्रभाव से वो काम अपने आप हो जाए, भोग भी चाहिए तो इसके द्वारा मिल जाए, यदि मुक्ति चाहो भी मिल जाएगा, वैकुंठ में मिल जाए, और जो और दूसरे काम से नहीं हुआ कृष्ण का प्रेम भी मिल सकता, खूब श्रद्धा के साथ में प्रीति के साथ में ये चीज हो, चाहे हम अपना खाने का समय और टाल देंगे, सोने का समय टाल देंगे, और संसारी कामों का समय टाल देंगे, किंतु पहले ये हरिनाम और दीक्षा गुरु ने जो दीक्षा का मंत्र दिया इसको करेंगे, नहीं करेगा तो कहे गुरु जी ने क्या दिया बेकार का, ये शास्त्र झूठे हैं, आज तक कुछ हुआ ही नहीं, हमें मन ही नहीं लगता, ये दोष किसका है, अपना दोष, कोई आगे बढ़ जाता है, कोई पीछे पिछड़ जाता है। ब्रज युवक ब्रज नम युव दंद की शरण, अनन्य भाव से श्री श्री राधा कृष्ण युगल किशोर के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करने को ही शरण करता है, वही हमारे सर्वस्व है, राधा कृष्ण प्राण मो युगल, राधिका दासी यदि हो अभिमान दंभ छोड़ करके माया छल कपटता विद्या कुटिलता सठता, इसको दंभ कहते हैं। माया छल, छल किसको कहते हैं? एक चीज को भीतर में रख करके बाहर से दूसरे प्रकार का भाव दिखना, ये छल। कपटता, भीतर में कुछ और बाहर में कुछ और। अविद्या, अविद्या मैंने कृष्ण को नहीं जाना, भक्ति को नहीं जाना, जीव तत्व को नहीं जाना। असठता, ये सबको दम्भ कहते हैं। भक्ति के अनुशीलन में इष्ट देव की प्रति विधि के अतिरिक्त मन में किसी प्रकार की दूसरी आकांक्षा या कामना नहीं होनी चाहिए। भक्ति साधन में कर्म ज्ञान योग इत्यादि की प्रधानता होने से अविद्या का प्रभाव बढ़ जाएगा। भक्ति के साधन में कर्म ज्ञान योग तपस्या व्रत ये सबकी प्रधानता होने से अविद्या बढ़ेगी। मतलब क्या करो, शुद्ध रूप में श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन इत्यादि में चलो। कृष्ण अनुशीलन में किसी प्रकार का प्रतिकूल भाव रहने पर यही माया छन्नता है, कोई भी प्रतिकूल भाव न रहे, इन सब का जत्न पूर्वक प्रत्याग करना चाहिए। शुद्ध भक्ति का आश्रय लेने से वर्णाश्रम जड़ लालसा स्वरूप भ्रम इन तीनों के संबंध में उत्पन्न हुआ जितने प्रकार के अनर्थ हैं सब दूर हो जाएंगे। अपूर्व रति, आत्मरति ही शुद्ध है, इसको बतलाया। इसका उपदेश का तात्पर्य क्या, इन्होंने भक्त विनोद ठाकुर जी ने बतलाया। जब तक भक्त संग के प्रभाव से कर्म की वासना क्षीण नहीं होती, कर्म की वासना क्षीण होना माने क्या, ये करना है, संसारी कर्म करना है, हमारा संसार में यह कर्तव्य है, स्त्री पुत्र परिवार पालन करना इत्यादि, कर्म बिना कुछ नहीं होता है, इसलिए कर्म करने में हमारा अधिकार है, हम करेंगे, ये सब कर्म की वासना क्षीण नहीं होती। जब तक कि भक्तों का संग न हो, और जब तक भक्तों का संग नहीं होगा तब तक शुद्ध श्रद्धा नहीं आएगी पारमार्थिक, और श्रद्धा नहीं होने से हरि कथा और सद उपदेश सुनने पर भी कोई काम नहीं होगा। लाख उपदेश तो और लाख उसको समझाओ हरि कथा, यदि श्रद्धा नहीं है तो नहीं के बराबर जीरो है, लाख सुनो तुम कुछ नहीं होगा। इसलिए हरि कथा के लिए को सुनने के लिए उसको दृढ़ता के लिए श्रद्धा चाहिए, और श्रद्धा होगी कब, जब साधु संग होगा। सौभाग्यवश परमात्मा श्रद्धा उत्पन्न होने पर सबसे पहले दीक्षा गुरु के शरणागत हो और जुगल मंत्र ग्रहण करो, और मंत्र से लेकर के दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरुओं की आत्मरति द्वारा पूजा करो। आत्मरति द्वारा माने गुरुदेव को केवल विद्वान मत समझो, मुनि मत समझो, और सम्मान देकर के संतुष्ट कर दो, बस यही नहीं, अपना प्राण हितैषी प्राण बंधु समझकर प्रीति पूर्वक उनकी सेवा शुश्रूषा करो। कनिष्ठ मध्यम उत्तम इन त्रिविध वैष्णव का यथा गुरु के सम्मान करो, प्रीति पूर्वक सेवा सत्कार करना चाहिए। साथ ही गुरु प्रदत्त मंत्र और हरिनाम अनुराग भी रखो, राधा कृष्ण जुगल को ही अपना प्राण स्वरूप समझकर उनके चरणों में शरणागत होना ही पहले श्लोक का जिस बस आज। इन सबको पालन करो, भजन में आगे बढ़ो, दूसरा कोई उद्देश्य न रखो।
तस्मै श्रीगुरवे नमः। पञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृता सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरवत्तिषे हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगत्पते गोपेश गोपिता कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि। हा देविका तु भरवद्गदयाद्यवाचा जाते निपत्त भूमि दंडवतोद घटारते अस्य प्रसादमभूतस्य जनस्य कृत्वा गंधर्विकेतव गणेशनन्दिने अंगश्यामलिं छटाभिरमितं मन्दितसेन्दीवरं जटञ्जयबुधरोचिसाङ्गजदगमपट्टम्बरस्य श्रिय बृन्दारण्यनिवासिनं हृदि लसद्दामाभिरामोदरं राधास्कन्दनिमेषितोद्यलभुजं ध्यायन् रामो भक्त्याभिहीनाय पराभय चित्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृतामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना वन्दे नमस्ते गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय पदभक्ताय यं प्रापृजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनोभिरहकार्करयाजुभाव पुत्रेति तन्मयतया कर्मोऽभिनेतु तं सर्वभूतहृदयम् तवैवास्मि तवैवास्मि न भुवामि त्वया पृथिवीभ्य राधे तं महिमा। एक आदमी प्रश्न कर रहा है जो प्रभुपाद जी ने लिखा है कि रूप रघुनाथ के अनुगत्य में या किया महाप्रभु जी की शिक्षा ये है कि विप्रलम्ब भाव में ही राधा कृष्ण का भजन करना कर्तव्य है। क्या है यही भजन श्रेष्ठ तो इसका क्या तात्पर्य है हमारे क्या नाम है सुबल सखा ब्रह्मचारी जी गौरचंद्र जी का भजन ही राधा कृष्ण का विपर्यम है। इस चीज को समझने के लिए ये चीज समझो एक साधन भजन है और एक भाव भजन है और एक प्रेम भजन है। इन चीजों को समझो पहले। एक साधन भजन माने साधन भजन भी दो प्रकार के एक वैदिक भक्ति के जितने भी अंग हैं उनको गुरु पदाश्रय से समझकर उनको अच्छी तरह से पालन करना है। किसके लिए उद्देश्य रहेगा अन्नाभिलाषिता श्लोक उत्तम भक्ति को लक्ष्य करके गुरु के बतलाए हुए साधनों को अच्छी तरह से हम जब शरीर के द्वारा करते हैं तो उसको कहते हैं साधन भजन। और जब किसी एक व्यक्ति के रागात्मिका भक्त के ललिता विशाखा रूपमंजरी यशोदा मैया नंद बाबा सिदाम सुदाम वसुदाम इत्यादि या किसी दास्य भक्त का जैसे हनुमान इत्यादि या सनत चंदन सनत कुमार ये शांत के इनमें किसी के एक भाव के प्रति लोग हुआ ऐसे ही हम भगवान की सेवा करेंगे। उनको भाव प्राप्त करने के लिए जब हम साधन करते हैं तब ये साधन भक्ति साधन भक्ति है साधन उनके भाव को प्राप्त करने के लिए जब हम साधन करते हैं इंद्रियों के द्वारा मन के द्वारा तब इसको रागानुगा साधन भक्ति का पहले वाला में ये उद्देश्य नहीं ये रागानुगा साधन। और जब भाव की प्राप्ति हो गई कि कौन सा भाव हम चाहते हैं तो उसका साधन अप्रेम के लिए किया तो इसको कहते हैं भाव भजन या भाव भक्त। और जब इसकी भी सिद्धि हो जाएगी प्रेम की, तो गोलोक वृंदावन में वहां के नित्य परिकरों के साथ में जो प्रेम क्रमशः बढ़कर के स्नेह मान प्रणय महा भाव कर जाए, वो हो गई प्रेमा भक्ति। ये तीन चीज इस जगत में, चाहे वैदिक भक्ति करे, चाहे राधानुग भक्ति करे, साधन भक्ति, साधन भक्ति में हम भगवान को देखते नहीं, उनसे साक्षात्कार नहीं, और साधन भी इतना उन्नत नहीं हुआ कि भजनीय के प्रति हमारी रुचि आसक्ति हो। पहले श्रद्धा रही, उसे निष्ठा हुई अनर्थ निवृत्ति के बाद में, और संबंध ज्ञान के बाद में, फिर निष्ठा के बाद में रुचि हुई, रुचि हुई भजन के प्रति, भजन के अंगों के प्रति, श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि, और जब आसक्ति होगी तब होगी भजन। भजनीय कौन? कृष्णम स्मर जब कृष्ण के प्रति, और हमारा जिस व्यक्ति के प्रति हमारा लोभ उत्पन्न हुआ है, उन दोनों का स्मरण करते हैं तब हम भजन करते। ये कहां हुई? अभी आसक्ति में वो बदल गया विषय, भजन भजन से भजनीय हो गया। अब आसक्ति इतनी हो गई कि अब भाव आने वाला है, उसमें बिंद मंगल इत्यादि की दशा, उस समय में विरह इतने तीव्र होगा। क्यों? भजन में रुचि होने तक अभी विरह तिरह कुछ नहीं, छटपटाहट नहीं होगी। जब आसक्ति हो जाएगी, पहले भजन के प्रति और फिर भजन के बाद में भजनी के प्रति जब आसक्ति हो जाएगी, तो उसके बिना रहा नहीं जाएगा। इसको कहते हैं विरह। उस समय कृष्ण के बिना देखे, या उनको जिसके प्रति हमारा लोभ है उनको बिना देखे रहा नहीं जाएगा। उसमें हा उतार सब समय दिन रात कहां मोर प्राणनाथ
भजन।
ये गौर भजन, ये गौर भजन। गौर भजन मैंने क्या? गौर के लीलाओं का चिंतन करना ही गौर भजन। तो गौरचंद्र जी का जो लीला है, विशेष करके जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा से लेकर के गंभीरा सभी लीलाएं, ये बड़ी विरह वेदनादायक। कृष्ण के विरह में तड़पते हैं। क्यों तड़पते हैं? कभी कभी इतने आसक्त होते हैं कि सब लीला को एकदम प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं, और अपने को श्रीमती राधिका मान करके और कृष्ण के परिकरों को उसी में लीला में लग जाते हैं। जब अर्धभाग्यावस्था में आते हैं तो उनको विरह होता है, हाय कहाँ गए वो सब, और बाह्य अवस्था में अत्यंत फुट फुट करके रुकते हैं। इन सब लीलाओं का स्मरण ऐसे ही हमारे जीवन में हो, उनके लिए विरह हो, ये गौर भजन है, विप्रणाम यही। ये क्या चीज है? महाप्रभु जी किस लिए रो रहे हैं? जिस प्रकार से कृष्ण के विरह में राधा जी रो, ये भी प्रणाम हो। साधारण साधकों के लिए ये चीज नहीं। अंततः आसक्ति आए तो इस विप्रलम्भ का आभास कुछ आ सकता है। जब तक कि भजनी और भजन में, भजन और भजनी में आसक्ति नहीं हो, और भवावस्था में अब प्रवेश करना अब होता है, वो नहीं होता, ये सब चीजें नहीं होती। इसलिए तब तक वैधि रूप में वैधि भक्ति का पालन करते हुए या साधन भजन का पालन करते हुए महाप्रभु के दिखाए पद से हम लोगों को और भी प्रगाढ़ रूप से चित्त को संयमित करके सब विषयों से इसके तरफ में चलना चाहिए। कैसे चलना चाहिए? रघुनाथ दास गोस्वामी को अधिकतर से फॉलो कर रहे हैं। रूप गोस्वामी के क्रिया मुद्रा को उन्होंने सब कुछ वर्णन किया है, भक्ति स्वामी सिंधु इत्यादि, किंतु कैसे साधन के द्वारा इसको पाया जाता है इसको रघुनाथ दास गोस्वामी अच्छी तरह से दिखला है। रूप गोस्वामी से भी अधिक रूप गोस्वामी ने सबको वर्णन किया, भाव सबको दिया, उसी पर चल करके रघुनाथ जी प्रैक्टिस करके चल रहे। इसलिए कैसे साधन भजन करना होगा ये रूप रघुनाथ दास गोस्वामी से, कैसे घर को तृण की तरफ में छोड़ दिया, जिस रूप के लिए सन्यासी लोग भी सन्यास छोड़ देते हैं, विश्वामित्र जैसे लोग, नारद जी जैसे लोग सन्यास और ये सब चीज छोड़ देते हैं, इसको ये तीन के समय में उस समय में सर्वश्रेष्ठ सुंदरी अप्सरा जैसी सुंदरी स्त्री को एक मुहूर्त भी नहीं लगा छोड़ दिया। घर के इतने बड़े भारी दौलत को, जो कि हम लोग अभी चाहते हैं ब्रह्मचारी की स्थिति में हम चाहते हैं सुंदर अच्छा कपड़ा, विशेष करके सफेद कपड़ा नहीं, उसको बार बार रंग करना पड़ता है, मैला हो जाता है। इसलिए वो आजकल क्या होता है, वो कपड़े की तलाश होती है, अच्छा कपड़ा, अच्छा चीज, अच्छे तरह से। उन्होंने कहा हालो ना खाइबे आज, इसलिए उन चीजों का साधन, ये ऐसा साधन होना चाहिए तब गौ का भजन होगा। गौ भजन करने के लिए उन्होंने ऐसा किया, यहां तक कि लोग प्रसाद दे जाते हैं जगन्नाथ जी का नहीं लेते, कहिए ये वेश्यावृत्ति है, स्वयं उपार्जन करना चाहिए। इसलिए जगन्नाथ जी के मंदिर में गाय खाने के बाद में इसको धो धा करके किसी प्रकार से जीवन लेता, कितना कठोर हो तब ये गौर भजन। तब महाप्रभु के भावों को उन्होंने प्राप्त किया, क्या प्राप्त किया, वहां से चले आए राधा कुंड में चले गए। राधा कुंड में उनका जीवन कैसा विपरल भाव, दिन रात रोते हैं, कैसे रोते हैं, किस लिए रोते हैं, महाप्रभु जी किस लिए रो रहे हैं, किस लिए। एक दिन उन्होंने रात में 12 बजे भाव नेत्र से भाव करने से सुना, बड़ी मधुर बंसी बज रही, उन्होंने कान से सुना कि किधर से आवाज, बस एकदम उधर से चल पड़े, कपाट लगे हुए हैं और वहां से चल गए। देखा जी समुद्र के किनारे से ये बंसी, समुद्र नहीं बल्कि जमुना के किनारे से आए, बस जमुना के किनारे पहुंचे, मैंने समुद्र के किनारे, और देखे जी कृष्ण की लीलाएं हो रही हैं, बस उसी में कूद गए और 24 घंटा डूबे रहे और न जाने कहां कहां मरे हुए जैसे मुश्किल से पीछे से सब दामोदर राय रामानंद इत्यादि उनका पता लगाया, और पता लगाने के बाद में देखा जी किसी को भूत लगा हुआ है, बुझाने के लिए उधर में गए, महाप्रभु जी को एक पिंड के रूप में देखा, मनुष्य की आकृति भी नहीं। उन्होंने जाकर के उस मछली को एक थप्पड़ मारा, तुम्हारा पुत्र उतर गया और दिखलाओ जी कहा है, तो उसने दिखलाया दूर से, और उन लोगों ने बेड़ा कीर्तन करते कीर्तन करने लगे, और कीर्तन करते करते उसमें थोड़ा थोड़ा श्वास आने लगा, फिर जब ये होने लगा थोड़ा सा, जब और थोड़ी बात हुई और जोर से कीर्तन किया, उठ खर करके हरी बोल करके नृत्य करते गए और रोने लगे। मैं कहाँ था, तुम लोगों ने क्यों बुलाया, मैं वृंदावन में जमुना जी में था, राधा कृष्ण की पीड़ा हो रही थी और तुम लोगों ने हमको बुला लिया, ये कह करके रो गए। उनका विप्रलम भाव क्या है, पहले हुआ मिलन और उसका वो लीला से वो निकल करके चले आए, अब उसकी सुखद स्मृति मधुर स्मृति के लिए अब देखते कि यहाँ पर तो नीरस, इसलिए खूब जोर से रो रहे हैं, कहाँ मोर प्राण नाथ मोर। इस विप्रलम्ब का कारण क्या है, मधुर मिलन पहले, उसी की मधुर स्मृति में पाने के लिए फिर से रो रहे हैं। तो महाप्रभु जी का विप्रलम्ब क्या है,
मिलन,
राधा कृष्ण का विरह, और उनका विरह भी किस लिए? मिलन के लिए। उनका विरह किस लिए होता है? राधा जी वृंदावन में बैठ करके द्वारका वाले कृष्ण के लिए रो रहे, ये द्वारका चले। क्यों रोने का कारण क्या? रास की याद आ रही, मिलन की याद आ रही, नंदगांव बरसाना इत्यादि में राधा कुंड में जो लीलाएं हुई, यहां याद आती है, बस रोने लगती है। तब उस विपरलम्ब का कारण क्या है? मूल मिलन संजोग की लीला, सुखद मधुर वही लीला है। इसे महाप्रभु को जब याद आती है तो रहा नहीं जाते हैं, प्राण नहीं जाता। अब जीव क्या करेगा? वो जो महाप्रभु की जो विपरलम्ब की मूर्ति जो महाप्रभु जी है, वो क्यों रोते हैं, क्या करते हैं, ये उस अवस्था में कुछ चिंतन करता है। कब? भाव के आभास में, अर्थात आसक्ति जब होती है उस समय, तो उस समय इसको चिंतन करके, जब कभी कभी उसको ऐसा हो सकता है झलक में महाप्रभु जी का दर्शन हो, उन लीलाओं झलक में राधा कृष्ण की भी हो, क्योंकि वही तो है। इसे झलक में होती है, और होने के बाद में जब करीब करीब एक मिनट हुई एक दिन में, बाकी उनका 23 घंटा और कितना मिनट है, कहां गया, कहां गया वो दृश्य, कहां गया वो दृश्य, दिन भर एकदम हो गया, छटपट आता है गौचंद्र के लिए। और घर में वो गौचंद्र की भावना क्या है? राधा कृष्ण की संजोग और विपरलम्ब। इसलिए गौ भजन ही तथा गौचंद्र जी का विपरलम्ब भाव है। हम साधकों के लिए साधन अवस्था में तथा आसक्ति, साधन की आसक्ति स्थिति में, यहाँ तक कि भावावस्था में भी, यही हम रलों के लिए विपरलम्ब। कृष्ण मिले नहीं, हम इतने दुर्भागा हैं कि हम लोगों जैसा कोई दुर्भागा नहीं, इतना सुजोग मिलने पर भी ये सब भाव हमारे हृदय में नहीं आए। हम संसार के खाने पीने मान अपमान में बहे, इसी को अधिक मान, भगवान का भजन करने का समय, इन सब लीलाओं का चिंतन स्मरण करने में का जो समय है किसमें चला गया? किसी ने किसी को कुछ कह दिया, चींटी काट दी, बस उसी में दिन भर बेकार, संसारिक सुख दुख के झमेले। इसलिए हम लोगों जैसा दुर्भागा नहीं, ये भी अनुभूति हो और इसके लिए रोए ना, तो ये विपरलम्ब का एक आभास है। विपरलम्ब नहीं है, विपरलम्ब कब होगा? जबकि राधा कृष्ण से या महाप्रभु से संबंधित होगा तब तो ये विपरलम्ब होगा। अभी हम लोगों का किस लिए है भजन नहीं? नैनन गलदास धारया, ये कब हमारे आंखों में नेत्रों में अश्रु बहेंगे? किस लिए अश्रु किस लिए बहेंगे? मिलन की लीला का स्मरण करते हैं, उसको पाने के लिए जो विरह होता है उसके लिए तो गुरु वैष्णव की कृपा नहीं होती, इसलिए रोएंगे। समय बर्बाद चला जा रहा है, भजन करने का समय यही है, 24-25 वर्ष से लेकर के 30-35-40 तक साधन के लिए, नहीं तो शरीर अपटू हो जाने के बाद में या विषयों में फंस जाने के बाद में नहीं होगा। जो इस समय सुधार कर लिया, मन की दिशा को चेंज कर दिया, तो फिर उसे साधन भजन के लिए, अनुभूति के लिए बहुत ही सरल हो जाता है। और इस समय बर्बाद हो गया, इसलिए इसी समय में साधन भजन ऐसा किया गया। कृष्ण के लिए रोए, गुरु जी के लिए रोए, ये भाव नहीं आ रहा है उसके लिए रोए, हम जीवन हम बर्बाद कर रहे हैं, और सब कुछ में भजन में लगे, विप्रलम्ब भाव का आभास भी आए, भय है कुछ नहीं किया। इसी का विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने भावावस्था में, आसक्ति की स्थिति में और भाव की स्थिति में साधक की कैसी स्थितियां होती है, कैसे चलता है, कैसे फिरता है, कैसे बोलता है, कैसे रोता है, कैसे हंसता है, किस लिए जमीन पर लोट पोट करके रोता है, उसका बहुत ही सुंदर चित्र दिया है। मैंने आरंभ किया था कुछ दिन, आसक्ति तक मैंने देखा जो ध्यान नहीं है उसके पर किसी का, मुझे अच्छा ठीक है जब फिर समय आया। तो इस तरह से समझ करके साधन स्थिति में हम लोगों को इस प्रकार से साधन भजन करना,
कहने से भी नहीं होगा। पूर्व जन्म की का संस्कार और इस जन्म में कुछ संस्कार और वैसे दृढ़ श्रद्धा नहीं होगी निश्चित, तो हम लोगों को सुन करके काम में आचरण साधन में आचरण करने की भी शक्ति नहीं रहेगी, इच्छा करने पर भी नहीं होगा। इसलिए शक्ति का संचार करो भगवान, और हम लोग शक्ति को संचय करें। कैसे हमको भजन में रुचि हो, अभी भजन में रुचि हो, संसारिक वस्तुओं को सम्मान को पाने में हम लोग कुछ कर सकते हैं रुचि वहां पर, इसलिए चेष्टा करनी चाहिए। अप्राकृत ये चीज है, कैसे भजन है, इसकी अनुभूति कैसे है। रघुनाथ दास गोस्वामी का चरित्र देखो, यदि ये करना है तो वैसा ही होना चाहिए, वैसा ही त्याग, वैसा ही वैराग्य, यद्यपि भक्ति का अंग नहीं है किंतु सहायक। इसके बाद में तो फिर भजन होने लग जाएगा। न धर्मम, दूसरा श्लोक हम लोग सात्वज्ञ है, बस न धर्मं न धर्मं सुति दुर्निरुक्तं रघुनाथ दास को। अरे मन, मेरे प्यारे मैया भैया मन, मेरी बात सुनो, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं, ये मेरी बात सुनो, मेरी बात नहीं सुनता। श्रुतियों में स्मृतियों में जो धर्म और अधर्म की व्याख्या की गई है, मन उधर मत झुको, सो मत भाई, सोने का स्थान नहीं। श्रुति में अर्थात वेद में जो कुछ धर्म अधर्म है उसमें निर्णय किया गया, श्रुति और स्मृति, उसमें जो कुछ कहा गया मन उस पर ध्यान न दो, बल्कि उनको छोड़ करके ब्रज में राधा कृष्ण के प्रचुर परिचर्या करने की चेष्टा करो। यहां पर वेदों का धर्म और धर्म से क्या बात है, जो कुछ है तो वेद श्रुति से ही दिया गया है, जो कुछ है उससे बाहर कोई चीज नहीं है। रघुनाथ दास गोस्वामी ने, हमारे गोस्वामी ने, महाप्रभु जी ने जीवन में जो अपनाया है उसी चीज को हमको ग्रहण करना है। श्रुतियों में लिखा माता पिता की सेवा करो, अतिथियों की सेवा करो, जुआ स्थाने पर माता पिता के आदेश से और उनके अनुगत्य में सर्वगुण संपन्न एक भार्या ग्रहण करो, उसके साथ में रहो, नहीं तो पितृऋण दूर नहीं होगा। पितृऋण और
मातृऋण,
देवऋण,
भूतऋण,
ये वेदों ने ऐसे ही कहा, इसलिए मात्र पितृ देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव और अतिथि देवो भव इत्यादि सब लिखा। इसलिए शास्त्रों में कहीं कहीं माता पिता की सेवा को उच्चतम दिखाया गया, कहीं पति की सेवा उच्चतम दिखाई दे, कहीं सत्य बोलो इसकी बात दिखलाई दे, तन मन वचन से किसी को भी कष्ट मत दो, किसी को भी कष्ट मत दो, हिंसा मत करो, तन मन वचन से हिंसा मत, ये सब बातें बतलाई दे। इसका पालन करना धर्म है, अपालन नहीं करना
अधर्म।
और यदि इसके विपरीत करते हैं तो उसको क्या कहेंगे, कुधर्म, कुधर्म है दोस्तों। ये तीन चीजें हैं, एक अधर्म जिसमें धर्म नहीं, एक है धर्म वेद विहित कार्यों का अनुष्ठान करना ही विधर्म, अधर्म क्या, वेद विहित अनुष्ठानों का नहीं करना ही, यह हुआ अधर्म। और वेद विहित धर्मों के विपरीत करना ये कुधर्म अथवा विधर्म, बी माने विपरीत धर्म। माता पिता की सेवा नहीं करते उसका विरुद्ध आचरण करते हैं, पत्नी को ग्रहण करके और फिर उसको वृद्धाचरण करते हैं, उसकी सेवा नहीं करते, उसका पालन पोषण नहीं करते। इससे यदि पति की सेवा नहीं करते तो ये भी विधर्म है। सब जानबूझ करके जो चीजें समझते हैं उसके विपरीत बोलते हैं, ये असत्य है। इसलिए जहां तक हो सत्य बोलना चाहिए, गुरु की सेवा करनी चाहिए, ये सब चीजें धर्म है और इसके विपरीत अधर्म हुआ, और इसके विपरीत कुछ करते हैं तो विधर्म। रघुनाथ दास गोस्वामी ने शादी की और शादी करने के बाद में घर से भाग गए, माता पिता की सेवा नहीं किया, ये क्या हुआ? अधर्म हुआ कि धर्म हुआ कि विधर्म हुआ? अधर्म या विधर्म? विधर्म भी कहते। छोड़ो इसका विचार को, अरे हमारी बात तो छोड़ो, महाप्रभु जी ने क्या किया? वृद्ध मैया की सेवा नहीं की, अपनी पत्नी जिसको बच्चा भी पैदा नहीं हुआ, खाने पीने के लिए भी कुछ घर में है या नहीं, इसकी तरफ भी नहीं देखा और छोड़ करके चले गए, अपना धर्म का पालन नहीं किया। रघुनाथ दास गोस्वामी जी भी ऐसे, कौन है किसको आलस्य आ रहा है, ये सब धर्म अधर्म है। किंतु कहां कहीं पर अधर्म भी धर्म हो जाता है और कहीं अधर्म भी धर्म हो जाता है, कहीं धर्म भी कब होता है? धर्म और धर्म जितने अभिधर्म का जो स्वरूप बतलाया गया है सब का मूल उद्देश्य है कृष्ण का भजन। मोक्ष
मन निमित्त कृतम पापमो के धर्माय मामनाकृत धर्मापि,
क्योंकि कृष्ण ही हमारे आत्मा के स्वामी, पति, पिता, जगत में सभी कुछ बने, कृष्ण ही सर्वस्व। इसलिए कृष्ण के लिए यदि कोई अधर्म भी करता है, धर्म को छोड़ देता है और कृष्ण की सेवा एकांतिक मन से करता है तो शास्त्र इसका अनुमोदन करता है। भागवत में ही कहा गया भूतात्मनीणाम पितृणाम करो नारिणी एम चराजन सर्वात्म
मुकुंद परिहत्य
नेह जत कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थ पाद सेवाय जीवन निमित्त। और एक ऐसा ही कोई कृष्ण के लिए यदि हम धर्म का त्याग करते हैं, अर्थात वह धर्म होता है वो भी ठीक है, कृष्ण के लिए यदि हम कभी विकर्म भी कर लेते हैं तो वो धर्म है। और कृष्ण को छोड़ करके, सेवा छोड़ करके यदि धर्म करते हैं तो वो भी विधर्म है। इस चीज को अच्छी तरह से समझना चाहिए। इसलिए महाप्रभु जी ने पहले उनको मना किया, जिस घर में लौट जाओ, बातुल मत हो, और ऊपर से लौकिक व्यवहार करो, भीतर से भक्ति रखो और थोड़े दिनों के बाद में तुमको कृष्ण उद्धार करो, उनको बताओ। इसके बाद में जब वो छोड़ करके चले गए तो बड़े प्रसन्न हुए और उनको कहा, तुम टट्टी के पैखाने के कीड़े से गर्त से तुम निकल करके आ गया, विषय विष्ठा रूपी गर्त से निकल करके आया, गड्ढे से निकल करके आया, आज तुम्हारा कृष्ण बड़ी तुम्हारे ऊपर उनका आलिंगन किया और उनको तब भक्ति का रस देने के लिए, पिलाने के लिए सौंप दिया सर्वधाम, और किस प्रकार से जीवन में रख करके उन्होंने भजन किया। ये तो मालूम होता है कि उन्होंने अधर्म किया, माता पिता की सेवा नहीं की, माता पिता चाहते थे ये हमारी सेवा करें, पत्नी के साथ में जो व्यवहार होना चाहिए शास्त्रों का अनुकूल नहीं किया, संसार वालों के साथ में वैसा कोई व्यवहार नहीं किया, राज इत्यादि चौपट हो गया उनके जाने के बाद में, वो भी नहीं देखा। यहाँ तक कि शरीर भी, शरीर का धर्म जो था क्या, अच्छा खाना पीना इसको दे, ये भी नहीं देखा। और दिन रात कृष्ण के भजन में चिंतन, सभी लोगों को देखो जो 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 भजन किया ये कल कल सभी लोगों का, ये विशेष करके उन्नत भाव वाले महाप्रभु जी जिस चीज को देने आए उन सब लोगों के लिए एक यही बात है। इसलिए कह रहे हैं निरुक्तों में, वेदों में, उपनिषदों में, शास्त्रों में, स्मृतियों में जो अधर्म और अधर्म की व्याख्या की गई है, परमार्थ कुछ इसे अलग है। त्रैगुण्य विषय वेदा न त्रिगुण, वेद त्रिगुण के विषय, सत्य रज तम के, जग इत्यादि का संपादन करना इत्यादि सब उसी के अंतर्गत, बेसी से बेसी वो यज्ञों के द्वारा स्वर्ग लोक तक जाए, उपनिषदों के द्वारा वो कुछ कुछ मुक्ति तक जाएंगे, सनक सनंदन सनातन की स्थिति को, ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ है नहीं आगे बढ़ सकते। कुछ कुछ विशेष उपनिषद हैं, कुछ श्रुतियां हैं, राधा उपनिषद इत्यादि है, अथवा कौन सा
गोपाल
तापनी इत्यादि जो कुछ कुछ उपदेश देती हैं उधर जाने के, और सब नहीं। इसलिए कहते हैं मुक्ति की भी जरूरत है। कहीं कहीं पर